नारायण नारायण नारायण। भगवत चिंतन करके चुप बैठ जाए, फिर मन इधर उधर जाए तो श्वास को श्वास को मिले। कितना भी बलवान पहलवान है लेकिन विवेक वैराग्य का अभ्यास किए बिना दुखों का अंत नहीं होगा। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है लेकिन अभ्यास वैराग्य की कमी है, इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्यं गृह्यते। कितना देखेंगे, कितना भोगेंगे, कितना खाएंगे, कितना संभालेंगे, आखिर शरीर तो मौत की तरफ जा रहा है। इस मरने वाले शरीर से ममता हटाना और अमर आत्मा में प्रीति लगाना, उसमें भगवान के नाम का सुमरण, श्वासोश्वास में भगवत नाम और अभ्यास करें। बार बार जो विषय विकारों में गिरे हैं अब अभ्यास करें। इस्लाम धर्म में एक सूफीवाद, सूफीवाद की साधना है तौबा। कई जन्मों तक अल्लाह ताला हम पैदा हुए और मरते रहे, आंखों को कई दीदार कराए लेकिन आंखों ने भी तसल्ली नहीं दी, अल्लाह ताला तौबा। नाक से कितना ही सूंघा, जीव से कितना ही चखा, काम बेकार कितना ही भोग कर अपनी कमर खराब की, तौबा अल्लाह ताला तौबा। मुझे विकारों से बचा, मुझे पाप से बचा, तौबा अल्लाह तौबा प्रभु तौबा। अपन बोलते भगवान की पुकार अथवा शरणागति, शरणागति अथवा पुकार अथवा भगवत प्रीति सबका फल है, दुखों से छूट जाए सदा के लिए, परम सुख हृदय में प्रकट हो जाए। एक फकीर ने लिखा है कि मैंने तो 70 बार तौबाएं की, तब तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कि दिल से तौबा नहीं थी, वो फिर से मैं वही इल्लत में, खान पान में, गलती में गिर जाता था। लेकिन 71वीं बार मैंने खूब हृदय पूर्वक पुकारा के अल्लाह तू बचा, मेरी प्रार्थना सुनी गई। और अब तो संसारी आकर्षण में, विकारों में, बेईमानी में, कपट में अब मन नहीं भागता। 70 बार प्रार्थना की तौबा पुकारी लेकिन 71वीं बार भी प्रार्थना स्वीकार हो गई। 70 बार तो क्या, 700 बार भी प्रयत्न करके अगर फिर मन मान लेता है पतन से बचता है, की हुई गलती नहीं दोहराता है, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता है, दूसरे के अधिकार को नहीं छीनता है, तो उस आदमी का कल्याण हो गया। कल्याण किस दिन हुआ कि अपनी गलती मनुष्य को महसूस हो कि ये मेरी गलती है और पतन के रास्ते ले जाने वाला है। कोई भी हठ, कोई भी आसक्ति, कोई भी विकार को पोषण, ये गलती है, ये समझ में आ जाए। ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तब तक गलतियों के साथ समझौता न करे, गलतियों को गहरा न उतारे, भगवान को प्रार्थना करे तौबा तौबा। तो तीन प्रकार की तौबाएं होती है। एक तो तौबा होती है कि पाप ताप से बचा दे, पाप ताप से बचा दे, गंदी आदतों से बचा दे, गंदे कर्मों से बचा दे। दूसरी होती है भगवान को प्रार्थना, पहली प्रार्थना में ये भी होता है कि जाने अनजाने हमने न जाने किस किस जन्म में क्या क्या कर्म कर डाले, उन कर्मों की भी मुझे सजा न मिले। तोबा तोबा। अभी के कर्म और पहले के कर्मों से तोबा पुकारे, एक। दूसरी तोबा है कि अपनी रहमत दे, अपनी कृपा दे। मैं अपने बल से तुझे नहीं पा सकता हूँ अथवा दुखों से नहीं छूट सकता हूँ। निर्बल के बलराम, हरि शरणम, हरि शरण। ईश्वर की कृपा पाने के लिए, एक तो गलतियों से छूटने के लिए, दूसरी ईश्वर की कृपा पाने के लिए, तीसरा निर्वासनिक नारायण में विश्रांति पाने के लिए, जो सदा हो साथ में है, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। और संसार की चीजें कोई लेके गया नहीं, तो उसके लिए बेईमानी क्यों करें, कपट क्यों करें, उसके लिए चिंता क्यों करें, लापरवाही से समय बर्बाद क्यों करें, तत्परता से सेवा करके कर्म को योग क्यों न बनाए। बल का दुरुपयोग करते हैं वे लोग बार बार बीमार हो जाते हैं, बल का दुरुपयोग करते हुए लोग बार बार दुखी चिंतित विफल हो जाते हैं। तो दूसरी तोबा है कि बल का दुरुपयोग न हो, दूसरे के अधिकार को न छीने, और माने हुए में दृढ़ विश्वास रखे, हमारी श्रद्धा हमारा यकीन बना रहे। जब तक जी में जान है, तन में प्राण है, मेरी प्रीति श्रद्धा तेरे तरफ दृढ़ रहे परमात्मा। मस्क गुना हे दयालु प्रभु रक्षमाम, हे देव सतबुद्धि दे, तेरी प्रीति दे। इस प्रकार। और तीसरे प्रकार की तोबा है कि मेरे को निर्वासनिक नारायण अपना आत्मस्वरूप का दान दे, दोबारा मरूं और जन्मू नहीं, माता के गर्भ में पड़ू नहीं, शरीर को मैं मानकर संसार की आसक्ति करके मैंने कई जन्मों में भटकाने वाली वासना पाली। तो कर्म बंधन और वासना से तोबा, उसकी कृपा पाने के लिए तोबा और प्रार्थना है। तीसरी है कि उसके स्वरूप में अपनी मैं को मिटा दे, मेरी मैं तेरे से अलग न रहे। जैसे पानी की तरंग सागर की तरंग सागर है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मैं भटक रहा हूँ, हे नाथ हे प्रभु दयालु देव, ये कच्चे मित्र और कच्चे सखे सहेलियों के बीच पक्का परमात्मा मित्र पद छूट रहा है। अपने में स्थित कर परमात्मा, हे देव हवाला। तीसरी बात, मेरा मैं तेरे से अलग ना रहे, और मेरे शरीर में मेरा अहम, मेरे धन दौलत और संसार की नश्वर चीजों में अहम, करते करते तो मेरे लाखों जन्म बीत गए, लाखों पिताओं के शरीर से पसार हुआ, लाखों माताओं के गर्भों में लटका, लाखों करोड़ों दोस्त बनाए, लेकिन फिर भी दुखों से नहीं छूटा। तेरी शरण, तोबा तोबा। हरि शरणम सत्यम शरणम गच्छामि, मध्यम शरणम गच्छामि। जो बोध स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है परमेश्वर, उसके शरण जाते हो। सृष्टि के पहले भी ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा था, बोले ज्ञान स्वरूप परमात्मा देव को भगवान ने भी नहीं बनाया, तुम्हारे आत्मा को भगवान ने भी नहीं बनाया, शरीर भगवान की प्रकृति ने बनाया, लेकिन तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी असलियत को भगवान ने भी नहीं बनाया, उसके पहले भी थी। तो भगवान ने तो सृष्टि किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है वो भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि सृष्टि अगर भगवान ने किया तो क्या भगवान ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? कि बोले अज्ञानी होगा तो कैसे बनाए, और ज्ञानी थे तो फिर ज्ञान तो पहले ही था। तो ऐसे ही ये शरीर के पहले तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वरूप था, सृष्टि के पहले परमात्मा ज्ञान स्वरूप, अब भी परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। ओम सुख स्वरूपाय नमः, ओम चैतन्य स्वरूपाय नमः, ओम शांतात्मने नमः, ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। भगवत तत्व में स्थिति पाने के लिए पुकार, पहली पुकार दोषों से मिटने के लिए, दूसरी पुकार भगवान के रास्ते दृढ़ता से चलने में, और तीसरी पुकार भगवत तत्व के सिवाय, भगवत सुख के सिवाय कहीं हम उलझे नहीं, और मेरे मैं को, परिच्छिन्न मैं को, मानी हुई जाति संप्रदाय फलाना डिंगड़े उस मैं को मिटाकर मुझे असली मैं में तेरी मैं में मिला दे प्रभु। ये तीन प्रकार की पुकार, ये तोबा मार्ग है, सूफी मार्ग, सूफीवाद में अपन बोलते शरणागति हरि शरणम, ओम बोलते नमो भगवते वासुदेवाय, जो अखिल ब्रह्मांडों में रम रहे परमात्मा वाह ओम नमो, मैं उनको नमन करता हूँ। भगवते जो भगवानों के अवतार होने के बाद भी ज्यों के त्यों बसे हैं मेरे में, मैं उन्हें नहीं जानता लेकिन वे मुझे जानते हैं। भगवान का नाम लेना ये कोई कर्म नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है, भगवान का नाम उच्चारण करना पुकार है, पुकार। भगवान नाम जप करना ये पुकार है, इस पुकार से पुरानी संस्कार वासनाएं मिटती है। भगवान नाम जप की ऐसी आदत पड़ जाए कि वाह वाह, अर्जुन को ऐसी आदत पड़ गई कि रात्रि को भी भगवान नाम से अर्जुन के रोंगटों से ध्वनि आती थी। हनुमान जी को ऐसी भगवान नाम की आदत पड़ गई कि हनुमान जी के रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण। अपने भी कई साधक हैं घरों में रहने वाली माया, हरिओम हरिओम बोलने की ऐसी आदत हुई कि उनका प्रभाव वाइब्रेशन शरीर में, और शरीर के प्रभाव नेत्रों हाथों के द्वारा रोटी में भी ओमकार वो भर जाता है। महाराष्ट्र में चोखा मेला हो गया, उनकी हड्डियों से भी भगवान नाम की ध्वनि नहीं, भगवान नाम का रन बढ़ा दे, भगवान नाम का स्मरण बढ़ा दे, वो भगवान की सत्ता को, कृपा को, आनंद को, ज्ञान को, माधुर्य को अपने अंतःकरण में भर देता है। तो अंतःकरण में जो वासना है, कपट है, बेईमानी है, जो छोड़ जाने वाला है उसी के लिए क्यों कपट करे? जिस शरीर को जला देने वाला, जला देना है, और जिन चीजों को छोड़ के मरना है उसके लिए क्यों बेईमानी करे, अथवा उस शरीर को क्यों विलासी बनाए? हे भगवान सतबुद्धि दे, सतप्रीति दे, सत्य स्वरूप में स्थिति दे। ये हो गई अपनी भाषा की प्रार्थना। दुर्गुणों से, दुराचारों से, दुष्कर्मों से क्षमा कर, सदकर्मों में प्रवृत्ति और निष्कामता दे, और मेरा मैं मिटा दे, मेरे कर्तृत्व भाव को, भोक्तृत्व भाव को तुझ में समा दे दे। ओम ओम नारायण हरि 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 ओम ओम। श्वास श्वास में आयुष नाश हो रही है, कौन सा श्वास आखिरी हो जाएगा पता नहीं है। दुनिया की सारी संपत्ति देने पर भी दो श्वास ज्यादा नहीं ले सकते हैं। पैसा बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा, स्वास्थ्य बिगड़ा तो कुछ कुछ बिगड़ा, चरित्र और समय बिगड़ा तो सर्वनाश हो गया। चरित्र की रक्षा हो, समय की रक्षा हो। हरि नारायण ओम ओम। ओम हे प्रभु ओम। बिन जरूरी बात क्या करना, बिन जरूरी खाना पीना पहनना क्यों, सार में लग जा। परमात्मा ही सार स्वरूप है, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद पाकर मनुष्य जन्म का फल पालो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निवावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता लोक नवीन पुण्य कर्म नहीं कर सकते, उनको कोई फल नहीं होता। और नरकीय जीव नरक में क्या करेंगे, कर्म का फल भोगेंगे, स्वर्ग वाला सुख भोगेगा। मनुष्य है जो अगले कर्मों को काट कर अपना नया जीवन धन्य कर सकता है। इसीलिए कोई देवता लोग भी मनुष्य शरीर चाहते, देवों को भी दुर्लभ है ये मोक्ष जीवन पालो। ऐसा मोक्षदायी मनुष्य शरीर व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विस्तार में, मगज में बातें बाहर की इतनी काय को भरे। जैसे हनुमान जी सेवा में तत्पर थे, लेकिन अपने लिए कोई बात हनुमान जी के हृदय में नहीं रहती थी। लक्ष्मण जी राम जी के सेवा की बात में तत्पर रहते थे, लेकिन अपनी निजी बात में कुछ। जब निजी बात की आसक्ति होती है तो जीव का पतन होता है। ईश्वर में प्रीति बढ़ा दे, जप बढ़ा दे, ध्यान बढ़ा दे। मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान को नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, तो क्या घोड़ा गधा कुत्ता बिला होकर पाएंगे क्या? मनुष्य जन्म ही है मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार है मनुष्य जन्म। ही करके करके तो चंचल लोग, जो हलकट लोग होते ना, उनको ब्रह्म ज्ञानी मुफ्त में मिले तो फिर वो मुफ्त, ये लोग उनको मुफ्त में ही सब समय शक्ति बर्बाद कर देते। एक एक श्वास बड़ा कीमती, थोड़ा प्रसन्न रहे, आज से विनोद थोड़ा हुआ, लेकिन सारी जिंदगी उसी में खप जाएगी, ईश्वर को खप पाएंगे? ईश्वर अपने आत्मा होकर बैठे, उनको कैसे जाने? जरा सा अपमान होता है तो कैसा भड़का चढ़ता है, अपना राग द्वेष, अपना पराया, बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, उसकी सेवा लो, उसकी सेवा लो, फिर भी मरोगे? एफडी बना के रखो, फिर भी मरोगे? पति की सेवा लो, पत्नी की लो, बेटे की लो, बाप की लो, फिर भी मरोगे? कितनी सेवा है, कितना संभालेंगे? और जो भी सेवा लेते हैं तो काय के लिए लेते, इससे क्या मिल जाएगा? बहुत अच्छी बात सुना दी नारद जी ने धृतराष्ट्र को कि तुम इस शरीर को रखकर अब क्या करोगे? युधिष्ठिर के टुकड़े खाकर क्या मिल जाएगा? वक्त कठिन आ रहा है, मौत नजीक आ रही है, कुछ अपने लिए करो। शरीर है पर और आत्मा है स्व। स्व के लिए नहीं किया और पर के लिए कितना भी करो तो दुर्योधन और अर्जुन के भाई मर गए, तो तुम कौन से अमर हो जाओगे? तो उनका शोक कर रहे हो। सब अपने अपने भाग्य से प्रारंभ से आते और चले जाते, मरता एक और शोक दूसरा कर रहा है। तुम्हारे ऊपर मौत पड़ी है, उसका शोक करो ना कि कब आए। जैसे वो कबूतर दाना चुगता और बिल्ली झपेट लेती है, सुबह कुछ खोजता है खाने को और बिल्ली झपट लेती, मेंढक अपना कुछ खाता है टेटे करा, एकाएक सांप उसको पकड़ लेता। सांप तो है, सांप के मुंह में तो है मेंढक, लेकिन मेंढक फिर और मच्छरों को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही तुम मूर्खता से क्यों समय बर्बाद कर रहे? धृतराष्ट्र को खरी बात सुना थी नारद जी, एक रात को धृतराष्ट्र चुपचाप महल छोड़कर चले गए। अंधे थे, पतिव्रता स्त्री उनकी, पति नहीं देखते तो मैं क्यों आंखें खोलूं, पट्टी बांधी हुई गांधारी। संजय को साथ लेकर कुंता जी ने कहा मैं भी फिर यहां क्यों रहूंगी महल में, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा पुत्र महल छोड़कर चल दिए। कहां गए? सप्त सरोवर, जहां भी अपना आश्रम है उस इलाके। मुंह में पत्थर रखते, मौन रहते, तीन दिन में एक बार भोजन करते, भोजन करते जलपान फल आदि जो भी। ईश्वर चिंतन में लग गए। जरा सा नारद का सत्संग सुना, धृतराष्ट्र सूरदास थे, घर छोड़ के चले गए, महल छोड़कर चले। कुंता महारानी थी, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी, संजय सब छोड़ के चले गए। ईश्वर के सिवा कहीं मन नहीं लगा, चुपचाप साधन में लग। ऐसे पांच पांडव राज्य छूटे, उसके पहले मौत आए, उसके पहले पांच पांडव राजपाट छोड़ के चले गए स्वर्गारोह ईश्वर की तरफ। कौशल्या राम राज्य हुआ, फिर थोड़े दिन में कौशल्या जी ने कहा अब हमको जंगल में भेज दो। राम जी कहते मां मैं 14 साल जंगल में जाके आया, अब तुम क्यों जंगल में जाओ? बोले यहां तो घर में राग द्वेष रजो तमो अथवा भोग प्रधानता होती है, हम अब आत्मयोग साधने के लिए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाना चाहते। राम जी ने कहा मां तुम्हारी अब बहुत जरूरत है, पिताश्री नहीं है, राजकाज के बोझी ले गहरे कोई प्रश्न उत्तर होंगे अथवा कोई बोझे से भरा होगा मन, तुम्हारे गोद में सिर रखूंगा, तुम्हारा वरदस्त मिलेगा, मन विचार विमर्श में तुम्हारी सलाह मिलेगी। कौशल्या जी ज्ञान मार्गी थी, विवेक प्रधान था कौशल्या, और दशरथ में भावना की प्रधानता थी, तो विवेक की प्रधानता वाले को वैराग्य होता है, भाव की प्रधानता वालों को प्रेम और भक्ति, उसको भी आसक्ति तो मिटानी होती। चाहे भाव की प्रधानता हो चाहे विवेक की प्रधानता हो, लेकिन संसार की आसक्ति तो दोनों की मिटती, और भगवत सुख भगवत शांति और भगवत पद दोनों को ही मिलता है। तीसरा होता है कर्म योगी का विवेक, कर्म करे लेकिन अपने मरने वाले शरीर के लिए न करे, कर्म करने के वेग मिटाने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म कर लिया, फल अपने तरफ नहीं घसेटे नहीं तो भोग में गिरेंगे, फल दूसरे के तरफ। तो अपने को तो जो चाहिए वो स्वतः सिद्ध है, अपने को चाहिए सत्य चित्त आनंद, तो स्वतः है अपन, कर्म से जो मिलेगा असत जड़ दुख रूप ही मिलेगा। अपने कर्म का फल चाहेंगे तो, और फल नहीं चाहेंगे तो सत्य चित्त आनंद प्रकट हो जाए। तो जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो सकामियों से बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा पद पाते। तो कौशल्या कहते हैं कि अब मुझे भेज दो, कैकेयी ने भी कहा, सुमित्रा ने। राम जी बालक पैदा होता है मूढ़ता होती, कुछ समझदार होता है तो समझता मुझे खिलौनों की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और युवा युवती होते तो पति पत्नियों की जरूरत है, और फिर बूढ़ा पाता है तो मूर्ता से मानते कि मेरी परिवार को जरूरत है। जीवात्मा की असली जरूरत है अपने परमात्मा को पाए, दुखों से छूट जाए, कष्टों से छूट जाए, जन्म मरण से छूट जाए, कर्म बंधन की वासनाओं से छूट जाए, निर्वासनिक नारायण तत्व को पाकर अमर पद को पा ले, इसलिए राम तुम देर न करो। राम जी गदगद कंठ कहते मां पिताजी कहते थे कि आपको व्यवहार का ज्ञान तो है लेकिन परमार्थ का विवेक का धर्म का सूक्ष्म रहस्य काल की धारा में बह जाए आयुष्य और समय और पश्चाताप हाथ लगे ऐसा जीवन नहीं। जो लोग आत्मपद के तरफ नहीं चलते उनको मरते समय पश्चाताप ही हाथ लगता है। जैसे जंगल में सब कुछ किसी ने लूट लिया हो और वो भूखा प्यासा पश्चाताप करता हो फरियाद करता हो ऐसे मरते समय जो इन विकारों में लुटे जाते मरते समय पश्चाताप की आग में तप तप के मरते अरे मैंने कुछ नहीं किया सब यहां रह गया छोरों को पाला मेरे तरफ देखते ही नहीं जमाई चला गया बेटी वहां हो गई पत्नी ऐसी हो गई पति ने ऐसा कर दिया अब मेरा कोई नहीं अरे मेरे हाथ कुछ नहीं आया रुपए पैसे यहीं पड़े रह गए गाड़ी भी नहीं ले जा सकते कुछ भी नहीं मरते समय सब यहां छूट जाएगा अनाथ होकर भटकना के रास्ते जाएगा बिहड़ मार्ग से कष्टदायी रास्ता मृत्यु के बाद अब क्या करूंगा कहां जाऊंगा। जिनको अपना माना था वो सभी पराये हो गए मौत आई तो कंधे पे चढ़ा के जला निकले गए तुम्हारी हड्डी भी तुम्हारे घर में नहीं रखेंगे फिर किसको अपना घर मान बैठे हो तुम्हारे बेटे बेटियां मित्र सखा संबंधी कब तक तुम्हारे रहेंगे। कौशल्या महारानी की सूझबूझ पर राम जी गदगद हो गए और रथ की तैयारी की। तीनों माताएं राम का राज्य राज महल राम जैसा पुत्र भरत जैसा पुत्र शत्रुघ्न जैसा पुत्र सबकी सेवा ठुकरा के चली गई जंगल। ये विवेक है वो आया वो गया वो हुआ वो हुआ है हा ही, 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 ही। अरे समय बीत रहा है हा हा ही, ही सुविधाएं मिली हा हा ही, ही करके अपने पर बोझ मत चढ़ाओ सुविधा का सदुपयोग करके ईश्वर प्राप्ति कर लो। ध्रुव को 5 साल की उम्र में तू मिल गया अंतर्यामी देव यहां 22 साल की उम्र बीत गई रोते रोते लेट जाते थके सुबह उनकी पत्नी उठाती कि वो तकिया गीला है मेरा पति ईश्वर के लिए तड़पता है उन्होंने पा लिया तो ऐसा पाया कि प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट भी उनके चरणों में अमेरिका का बैठ के शांति पाता। मीरा रोती थी राती हम भी राते रोते थे हा हा ही नहीं करते थे। मेरे गुरुजी भी आबू के बाजार से उठा के दरवाजा सिर पे गुफा बनाए उन्हीं गुफा में हम लोग भी रहते शंकर गुफा बनाए बापूजी ने विरक्त महापुरुष थे लेकिन अपने समय का सदुपयोग कड़ियों आए मजू न घुरा मां आया ना साईं जिन पान दीवाल खनाए ऐसे ऐसे महापुरुषों ने कितनी तपस्या किया और अपन लोग उनकी तपस्या का क्या फायदा उठाए क्या कर। नारायण हरी 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 ओम हरी। मेरे गुरुदेव तो रात को भिगा के रखते कुछ दाने गेहूं के ये वो और मिला के थोड़ी मूंगफली के दाने सुबह चबा चबा के खूब खाते फिर किसी ने कहा ये उचित नहीं तो छोड़ दे फिर रोटी वोटी बना के खाते और मजे मैं मूंग उबाल के खाता बाद में थोड़ा दलिया कभी कभी लाइट भी चाहिए पानी भी चाहिए कपड़े टिप टाप चाहिए भोजन भी चाहिए चटनी भी चाहिए फलाना भी चाहिए लेकिन आखिर मौत आएगी ये चाहिए चाहिए जी पर के लिए कितना रखोगे स्व के लिए क्या क्या तुमने तो प्रवृत्ति दो चीजों के लिए होती है, एक पर के लिए होती है शरीर और छूट जाने वाले के, और दूसरी स्व के लिए होती है। आप स्व के लिए क्या किया और पर के लिए क्या किया। भौतिक उन्नति पर के लिए है और आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है। कर्म का फल चाहना पर के लिए और कर्म निष्काम भाव करना स्व के लिए। कर्म का सुख भोगना पर के लिए है और कर्म का सुख बांटना स्व के लिए। दूसरे के अधिकार की रक्षा करना स्व के लिए है, दूसरे का अधिकार छीनना पर के लिए। मिले हुए में शंका करना, जिसको मानते उसमें शंका करना तो पर के लिए होगा, जिसको मानते उसकी बात पे अडिग रहना स्व के लिए। गुरुजी की दो जमा शबरी भाई पर बस गुरुजी ने कहा राम मिलेंगे, रोज बाढ़ देखती हमको गुरुजी ने कह दिया उड़ीसा में, तो बस फिर बात ही पूरी हो गई। 7 साल एक दिन भी रहना मुश्किल है ऐसी जगह पे, गुरुजी के आगे 7 साल रहे तो ना। अपनी इच्छा छोड़ दिया भगवान की या गुरु की इच्छा, तो आपने स्व के लिए कल्याण कर लिया। लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आपको सुविधा चाहिए, नहीं तो भागते फिरते तो आप पर के चक्कर में आ गए। मेरी हो सो जल जाए, गुरु की हो सो रह जाए, प्रभु की हो सो रह जाए। आजकल होता क्या है, सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे पास आते। हमारी इच्छा के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के तरफ नहीं जाते, उनको जैसा अच्छा लगे ऐसे दर्शन धक्का धक्की, सब अपनी इच्छा के अनुसार इधर इकट्ठे हो, कोई जरूरत नहीं। जिनको रुकना है बैठना है भजन करना है तो करो, बाकी पर के लिए परेशान होना है तो चले जाओ। संसार का जो मिलेगा पार होगा और भगवान के लिए जो करोगे स्व होगा। तो दो प्रकार की उन्नति होती है, स्व के लिए पर के लिए। शरीर के लिए कितना भी तुम सुख सुविधाएं खोजते मरोगे तो पर के लिए होगा, शरीर पर है आत्मा स्व है। और आत्म प्राप्ति के लिए कितनी भी सेवा जप तप करोगे स्व हो जाएगा, उसमें विवेक करोगे स्व हो जाएगा, वैराग्य करोगे तो स्व के लिए हो जाएगा। विवेक का अनादर किया तो आप पर की परेशानी में फंसोगे। विवेक का आदर करो, वैराग्य का आदर करो, भगवान नाम आदर पूर्वक जपो, पुकारो प्रभु ओम ओम हरि नारायण नारायण। जगत की किसी परिस्थिति की किसी चीज की मान की इच्छा या किसी के लिए अंदर में द्वेष है तो आप गुलाम है, गुलाम दास है। आपके पीछे न जाने कितनी वासनाएं कितने दुख लगे रहेंगे। किसी के लिए भी हृदय में द्वेष नहीं रखो, किसी चीज के लिए राग न रखो, लग जाओ बस। ओम हरि हरि हरि। जो अपना कल्याण करने वाले का उपकार नहीं मानते वो अपने आप के ही शत्रु थे। जो हमारा मंगल चाहते और हम उनके लिए फरियाद करें तो हमारे को बड़ा भारी पाप लगता। हमारे गुरु जी हमारा मंगल चाहते और हम हमारे गुरुदेव के लिए हृदय में फरियाद रखते तो हम तो तबाह हो जाते। कभी डांट पड़ती थी या कभी इधर उधर होता था, लेकिन फरियाद क्यों करे, तारण हार के लिए फरियाद, डूब मरो फिर। जो सतगुरु तारण हार है उनके लिए मन में कपट आ जाए, बेईमानी आ जाए, फरियाद आ जाए, उस आदमी को बड़ा भारी घाटा सहना पड़ता है। उस आदमी को प्रायश्चित करके रोना चाहिए, तोबाएं पुकारनी चाहिए, सिर पटक पटक के रोना चाहिए, ही नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम बार बार लो, पुकार पुकार, फिर परमात्मा रक्षक होते। पुकारोगे नहीं तो काय को रक्षा करेगा, अपने हेकड़ी से चलोगे तो क्या करे, जाओ करो करो भरो, नियम है। हम तो नर्मदा किनारे रास बालू में बैठते, क्या क्या बोलते, कैसे कैसे होता, कभी रोते कभी क्या क्या करते, फिर भी संतों का संग गुरु का संग कितना तत्परता से, और उनकी आज्ञा में अपने को बिल्कुल बांध के रख दिया तभी अपना कल्याण हुआ, नहीं तो गुरु जी के पास तो बहुत आते थे, सभी को जैसी प्रेरणा होती थी आशीर्वाद लेके चले जाते थे। लेकिन चंदीराम ने आज्ञा मानी तो कैसा चंदीराम का जीवन, आखिरी जीवन कितना ऊंचा, शुरुआत का जीवन चंदीराम का कितना हलकट और आखिरी जीवन चंदीराम का कितना ऊंचा। खाली आज्ञा मान लिया बस, अभी भी उनके सेवा सत्कर्म सद्भाव गुरु के हृदय में सद्भाव छोड़ के गए, बेटे के हृदय में छोड़ के गए, थोड़े सेवा कार्य भी चल रहे। द्वेष राग हो तो एक पर के लिए होता है, दूसरा स्व के लिए होता है। आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है, भौतिक उन्नति पर के लिए। अच्छा, भौतिक उन्नति में कूड़ कपट धोखा बेईमानी और अंत में नरकों में मरो, आध्यात्मिक उन्नति में परोपकार सेवा तत्परता और अभी भी आनंदित और अंत में परब्रह्म परमात्मा में एकाकार हो जाओ, ये है रिजल्ट। कर्मयोग का फल क्या है कि परमात्मा जीवन मुक्ति, और कर्म भोग का फल क्या है कि परोसो नरकों में जाओ। मनोवैज्ञानिक से पूछें कि आदमी अपराध कब करता है, मनुष्य बुरी कामनाओं में कब पड़ता है, बुरे कर्म कब करता है, बोलो। कोई सच्चा मनोवैज्ञानिक होगा, ईमानदार मनोवैज्ञानिक होगा तो वो बोलेगा कि जब वो नीरस होता है उसका जीवन, तब वो अपराध करता है, काम विकार में, शराब में, सुंदरी में, सुरा में, चुगली में, नीरसता मिटाने के लिए चुगली का काम करता है। वासना कब उठती है, जब अंदर से नीरसता होती तब वासना उठती। तो महापुरुष इस रहस्य को जानते हैं कि काल्पनिक रस पाने के लिए, नीरसता मिटाने के लिए शराब कबाब चुगली गपशप, अपने घर में रस नहीं आया तो पड़ोस के घर में चली गई, क्या बनाया है, मैंने तो दाल बनाई है और मैंने सब्जी भी बना ली, अब सोच रही थी कि रोटी बना दूं कि हलवा बना दूं, तो मैं जरा ऐसे लटार मारने आ गई। क्यों गई लटार मारने, अपने घर में रस नहीं आ रहा था, ठीक बात है, मजा नहीं आ रहा था। तो नीरसता मिटाने के लिए, सरसता लाने के लिए कई उपाय कर करके लोग आखिर थक के मर जाते, निराश होकर, दुखी होकर, विफल होकर। कामना कब उत्पन्न होती है, और पति पत्नी शादी भी किया तो काम विकार किस दिन भोगते, जब नीरसता होती है तब, सरसता के लिए। और रस मिलता है क्या, थोड़ी देर रस मिला काम विकार का, बाद में घोर नीरसता आती। तो दुनिया के कोई भी पाप कर्म कहो, वासना प्रेरित कर्म कहो, इंद्रिय लोलुपता कहो, सारी की सारी मूल में नीरसता से उत्पन्न होती है। अगर कोई अक्ल वाला विज्ञानी होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, चिकित्सक होगा तो इस बात को मानेगा ही, अगर नहीं मानता है तो या तो बदमाश है या तो बेवकूफ है, समझ गए। अब नीरसता मिटाने के लिए, सरसता लाने के लिए जॉक्स ये करते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्या क्या करते हैं, सब आ गया, सारी दौड़ धूप है रस को पाने के लिए, सारी दौड़धूप रस को पाने के लिए है। क्यों? कि जीव परमात्मा रस स्वरूप है और जीवात्मा जो है ना वो परमात्मा का सनातन अंग है। तो परमात्मा रस स्वरूप हो तो ये नीरस इसे सहा नहीं जाता। एकाकी न रमते, नीरसता में कैसे रहेगा। तो फिर इन जीव बुद्धि के साथ, बुद्धि मन के साथ और मन इंद्रियां के साथ, तो इंद्रियां पशु धर्मा है, मन को खींच लेती है और बुद्धि कमजोर है तो नीरसता मिटाने के लिए इंद्रियों के द्वारा रस खोज खोज के आदमी दुराचारी हो जाएगा, एड्स का शिकार हो जाएगा, ज्यादा पेटू हो जाएगा, चिंता भय शोक और आखिरी में मरते समय घोर पश्चाताप हाथ लगेगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। फरियाद निराशा, फिर किसी से बदले लेने के वैर से मरा तो वहां सर्प होगा या उसका बेटा बनेगा या उसका पशु बनेगा या कुछ बनेगा। राग से या तो द्वेष से जलता हुआ निराशा के आग में पचता पचता मर जाता है और फिर वही क्रम 84 लाख योनि में भटकाता है। तो इससे बचने का सुंदर उपाय है कि रस भी मिले, नीरसता भी मिटे और विकारों में भी ना गिरे। तो वो रस चार प्रकार का है। एक तो उदारता का रस, जैसे द्रौपदी जंगल में रहती है, 14-12 वर्ष वनवास मिला है, कहां तो महारानी और कहां मन में भटके, फिर भी द्रौपदी के जीवन में इतनी प्रसन्नता और चमक थी कि रानियां पूछती थी कि तुम इतना कष्टों में भी इतनी प्रसन्न और हम महलों में रहते हुए भी दुखी क्यों। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं दूसरों की सेवा खोज लेती हूं तो मुझे औदारी रस मिलता है, तुम भोगों के रस में नीरसता मिटाती हो। इस शब्द में द्रौपदी के द्वारा शब्द में व्याख्या कर रहा हूं, उस कथा में इतना नहीं, नीरसता का टॉपिक, लेकिन दृष्टांत ही देता। तो विषय विकारों से नीरसता मिटाकर रस पाती है और ये सेवा के द्वारा औदार्य का रस पाती है। तो विकारों का रस पराधीन करता और औदार्य का रस स्वाधीन करता है। सेवा तो किया लेकिन बदले में कुछ चाहा नहीं, क्योंकि आपको परम रस चाहिए, वो तो अपना स्वभाव है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती जी ने तो शिव जी की बात अनसुनी कर दी, मायके चली गई, तो नीरसता हुई ना, पत्नी नहीं माने शिव जी जैसे। शिव जी तो कितना हादसे जैसा, शिव जी को कुछ नहीं, ध्यानस्थ हो गए, बाद में तो सती को सहना पड़ा और क्या क्या हो गया सती के बाप का ये वो। तो एक होता है औदार्य रस, आपके पास जो योग्यता है, बोले धन होगा तो हम दान पुण्य करेंगे, उदारता का रस। अभी धन नहीं है तो बल तो है ना, बल से सेवा करो। बोले बल भी नहीं है, तंदुरुस्त होंगे तब सेवा करेंगे, तो अभी मन तो है। तो मन से ही भगवत प्रीति, भगवत जनों के लिए सद्भाव और मन से जितना सेवा हो सके तो इससे भी औदार्य रस मिलेगा। तो द्रौपदी ने कहा मैं दूसरों के दुख दूर करने और दूसरों की सेवा करने और बदले में कुछ न चाहने से औदार्य रस से द्रौपदी तृप्त है। रानियां इतनी तृप्त नहीं है, वो विकारी रस से तृप्त होने को जा रही। फिर एक औदारी रस है, दूसरा है शांत रस। जितनी इच्छाएं वासनाएं हैं सब पूरी किसी की नहीं हुई, जो उचित है और कर सकते हैं और जिनके बिना नहीं चलता वो अपने लिए कर डाला और जिनके बिना चल सकता उनको हटा दिया। तो आप ध्यान की शांति में, कर्तव्य की तृप्ति में औदारी रस पाए, औदारी रस फिर शांत रस मिले। और भगवान और गुरु के प्रति आत्मीयता करने से प्रेम रस पैदा होता है, और प्रेम रस में नित्य नवीन रस, नित्य दिने दिने बढ़ता, दिन दिन बढ़ता है। और वो प्रेम रस में सात लक्षण होते हैं। एक तो बढ़ता है, दूसरा उसमें नीरसता नहीं आती, तीसरा उसमें वक्रता होती है तो भी मजा आता है। सब फेंक दिया, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, ये वक्रता है प्रेम रस की। अथवा गोपियों ने कहा तुम नाचो फिर छाछ देंगे, ये प्रेम रस की वक्रता है। चौथा, प्रेमी के दोष होने पर भी नीरसता नहीं होती, अपना है। और पांचवा ये सद्गुण है कि प्रेम रस में दूरी नहीं, देरी नहीं। 5200 वर्ष बीत गए हैं श्री कृष्ण को, लेकिन मीरा का प्रेम रस भावना से कृष्ण को अपने नजीक पाता है, चित्र में पाता है। गुरु कहीं और शिष्य कहीं है, प्रेम रस में गुरु शिष्य की वार्तालाप हो जाती है, सपने में दर्शन हो जाता है। अथवा जरा नजर की भावना होती तो नजर मिल जाती तो प्रेम रस उछलता है। तो प्रेम रस में दूरी नहीं होती, देरी नहीं होती, थकान नहीं होती, उबान नहीं होती, नित्य नवीन होता है। काम रस में थकान होगी, उबान होगी, धन रस में थकान होगी, उबान होगी, टेंशन होगा। तो निरसता मिटाने के लिए न धन सार्थक साधन हुआ, न सत्ता सार्थक साधन हुई। सत्ता के बाद भी आदमी क्लबों में जाते, धन के बाद भी निरस्ता मिटाने के लिए क्लबों में जाते, क्लब में जाने के बाद भी निरस्ता मिटाने के बाद रंडियों के साथ नाचते, रंडियों के साथ नाचने के बाद भी निरस्ता मिटाने के लिए रंडियों के साथ विकार का काम भी कर लेते। निरस्ता मिटती नहीं है, जड़ता बढ़ती है, पराधीनता बढ़ती है, और भ्रम हो जाता है कि हम क्लब के बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते, मेरी गर्लफ्रेंड के सिवा मैं नहीं जी सकता हूं, मेरे को तो मैरिज करना पड़ेगा, रात को नींद नहीं आती मेरे को, यूं करते और सुसाइड हो जाते, आत्महत्या कर लेते कई लड़कियां कई लड़के। तो खान पान का या सुविधा की कमी है ऐसी बात नहीं, सत्संग की कमी है, सच्ची समझ की कमी है। इसलिए सारी सुविधा होने के बाद भी विकसित देशों के हाल बुरे हैं, 12.5 लाख कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती, 13 साल से 19 साल तक, तो कैसी दुखद अवस्था है। तो निरस्ता मिटाने के लिए सुंदर उपाय है कि भगवान और गुरु के साथ आत्मीयता करें, वे अपने हैं, हमारे हैं। भगवत मंत्र गुरु के द्वारा मिला है, उसके जप से रस बढ़ेगा, जागृत होगा। नाम जप की महिमा गुरुवाणी में कही, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल शिव जी का पैरवेश क्या है? अमंगल, मरे हुए जानवर का चमड़ा, मरे हुए मुंडों की, मनुष्यों की मुंडों की माला खोपड़ियों, शमशान की राख। और शिव जी के गहने गांठे क्या है? भुजंग, जहर उगलने वाले सांप। साज अमंगल मंगल राशि। शिव जी के जो पहरवेश है वो तो सब अमंगल में है, लेकिन नाम रस में स्वरस में इतने तृप्त है कि मंगलों की राशि हो गए। नाम प्रसाद नारद ही जाना, सुख सनकादि नाम रस माना। तो भगवान तो सबके हैं, लेकिन जो प्रेम रस से भगवान को आराते उसी के भगवान सेवक बन जाते। अर्जुन भगवान के साथ इतना प्रेमा भक्ति का और जब भगवान नाम लेता था कृष्ण का कि कभी नींद में अर्जुन के रुमाटों से श्वास से कृष्ण कृष्ण निकलता था। हनुमान जी का राम जी के प्रति इतना प्रेम था, इतना स्नेह था कि कितना भी कार्य आ पड़े हम कभी थकान नहीं लगती थी, क्योंकि प्रेमास्पद का कार्य। नहीं तो हनुमान जी जन्मजात ब्रह्मचारी लंगोट के पके, और किसी की पत्नी खो गई इसमें एमा मारू सु मने तो मंत्र आपो हूं तो मारे जैन घरे भजन करीस। ऐसे स्वार्थी हनुमान जी होते हैं तो इतना जीवन हनुमान जी का विकसित नहीं होता। न स्वार्थी थे न पलायनवादी थे। पत्नी तो राम जी की रावण उठा गया और हनुमान जी ने अपने को होम दिया उस सेवा में, ऐसा कि उनके पकड़े गए, उनकी पूंछ को आग लगाई दी गई, फिर भी हनुमान जी ने ये नहीं कभी सोचा या कहा कि हाय रे मैं कहां झंझट में पड़ा, मारे शू आ रीते मारे राक्षसों साथे वैर लेवन शू जरूर बहरी एम नहीं गई, अरे मारे आवे तणाई मरवानो आपड़े तो माया करो एकांत में जैन राम राम करीशू, तो राम जी भी फल हो जाते। मैनाक पर्वत ने देखा कि इतनी बड़ी समुद्र लांघने की यात्रा करके हनुमान जी थके होंगे, तो मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकला कि मुझ पर रघुकुल की कृपा है, रघुवंशियों ने मेरे को मदद की है, काश रघुवंशियों की सेवा करने तुम जा रहे हो, मैं समुद्र से बाहर आया हूं मुझ पर थोड़ा विराम करो। तो हनुमान जी ने क्या कहा? आरंभ करने के लिए उतरा नहीं, आकाश में हनुमान जी खड़े रहे, मैनाक पर्वत पर पैर नहीं रखा। बोले नहीं नहीं मुझे थकान नहीं है, राम काज बिन कहां विश्राम। राम जी का कार्य करने निकला हूं, विश्राम की क्या जरूरत है। तो प्रेमी को प्रेम रस में इतना छका रहता है कि कार्य की थकान भी ज्यादा नहीं होती। खैर शरीर को थोड़ा बहुत आराम देना पड़ता है, देते होंगे दिया होगा, फरियाद नहीं होती। मेरा स्वभाव मेरी प्रकृति ऐसी थी कि मैं नर्मदा किनारे एकांत गुफा में रहता था, अपने हाथ से भोजन बनाता अनुष्ठान करता, तो जब तक मालाएं पूरी नहीं हो तो मैं सोता नहीं था, और संख्या ज्यादा थी तो माला करते करते रात्रि के 10 11 12 1 बज जाता, तो नींद ना आ जाए तो फिर शिव मंदिर के पीछे पीछे चौक में घूमते घूमते भी अपना नियम कर लेता। और मेरा अनुष्ठान बढ़िया हुआ है तो आज ऐसा हो ऐसा हो, तो जैसा मन में सोचता तो ऐसा मंदिर में जाता तो शिव जी के निर्माल्य गिर पड़ता, पार्वती जी के श्रृंगार से कुछ फूल या कुछ चीज गिर पड़ती, तो ये सुकून माना जाता है कि देव आपकी पूजाएं आपके साधन भजन पर प्रसन्न है, ये संकेत माने जाते। तो ऐसा सुंदर माहौल था और गुफा भी मिली हुई थी किसी ब्राह्मण की थी, और नर्मदा का किनारा व्यू दिखता था। फिर गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास किसी डीसा के कॉरपोरेटर था डॉक्टर, उसने कोई जमीन खाली पड़ी होगी सरकारी, उस पर अपना दवाखाना खड़ा कर दिया। जब विरोध पक्ष का उछाला हुआ और उसका गला घुटा तो उसने रातों रात उस पर लिख दिया साईं लीला आश्रम। अभी भी बना हुआ तो मरीजों की पट्टियां धोने के लिए वो कमरा फमरा ऐसे ही बना हुआ है। और भागा बंबई में आया, कोई साधक दो बापू आपके नाम का आश्रम बनाया। तो मैं बापू के चरणों में गए तो दूसरे लोगों को ये लगा कहीं ये आगे ना आ जाए तो हमारा नाम दे दिया। तो बापू जी ने कहा अच्छा इनको ही भेज दो। एक दिन दो दिन नहीं, झोपड़पट्टी के बीच टेकरे पे अभी भी है उड़ीसा में वो जगह, तो झोपड़पट्टी के बीच उसने जो बना दिया दवाखाने के लिए क्लिनिक खोलने के लिए उसको फिर आश्रम कर दिया। तो उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए जलता घर कृष्ण अर्पण तो हमको भेजा गया। तो उसका मामला जब थोड़ा शांत हुआ तो फिर वो हमको भगाने के लिए उसने सारे साज चलाए, हम वहां से चले जाए। और हमको अच्छा भी नहीं लगता था झोपड़पट्टी के बीच। तो बापूजी को हम चिट्ठी लिखते गए यहां तो ऐसा है आप आज्ञा करो तो मेरा नर्मदा किनारे में है कुटिया उधर। तो उत्तर आता कई दिनों के बाद कि वहीं रहो। फिर लिखता कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, इनकी मर्जी नहीं है, इन्होंने तो ये बचाने के लिए ऐसा ऐसा तंत्र किया वो किया है। थोड़ा विस्तार से नहीं लिखते थे मर्यादा में। और यहाँ भील और ये सब झोपड़पट्टी वाले हैं, दिन भर ऐसा शोर शराबा होता है, ध्यान भजन भी नहीं होता, और रात को कुत्ते भौंकते और दिन को छोरे आपस में गालियां देते रहते हैं, पड़ोस में लड़ते रहते हैं। तो बापूजी की चिट्ठी आई कि कुत्ते भौंकते तो क्या है, ओम ओम बोलते ऐसी भावना करो, और वो गालियां देते तो आकाश में जाती। एक दिन दो दिन नहीं, 7 साल हमने गुजार दिए। तो गुरुदेव के प्रति प्रेम था तभी मेरे में 7 साल गुजारने की ताकत, नहीं तो उन दिनों में मैं रोज के 10-15 तोला सोना कलेक्ट कर सकता, कमा के खरीद करके रख देता। ऐसे दिन थे। और डीसा और अहमदाबाद क्या अंतर रहता है, गुरु जी की आज्ञा हो गई डीसा रहे, लेकिन हमको अच्छा नहीं पाया, साधन भजन नहीं होता अपना, तो चले जाते नर्मदा किनारे। तो गुरु जी थोड़े रोकते थे, मैं तो शादी शुदा भी था, सब कुछ था, लेकिन प्रेम था गुरु की आज्ञा के प्रति, गुरु के प्रति और भगवान के प्रति, तो हम बच गए। अगर गुरु के प्रति आज्ञा पालने के प्रति प्रेम नहीं होता तो हम डीसा छोड़ के नर्मदा किनारे जाते, तो नर्मदा किनारे तो कई लोग अभी भी भटक रहे। तो गुरु आज्ञा के प्रति जो प्रेम होता है वो बड़ी रक्षा करता है।